الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کلاس میں ہم معارف القرآن کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں جو کہ علوم القرآن کے اوپر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو عنوان ابھی ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے وہ ہے تاریخ حفاظت قرآن. پیچھے ہم نے جو قرآن مجید کے 7 حروف ہیں یا 7 قرآتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھ مکمل کر لیا تھا پچھلی کلاس کے اندر. آج ہم پیج نمبر 35 پر سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظت قرآن یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لیے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے. چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف تو قرآن مجید پورا نازل بھی ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کر کے رکھا جائے. ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر پورا کا پورا جو ہے نا وہ ایک صحیفہ نازل ہو جاتا اور صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام اس کو چھپا کے رکھتے کہ نہیں میں نہیں دکھاؤں گا، میں صرف اس وقت دکھاؤں گا جب جو ہے وہ حالات و واقعات پیش آئیں گے اور پھر ان سے متعلق کوئی آیت نازل ہوگی تب میں دکھاؤں گا، ورنہ میں نہیں دکھاؤں گا. ایسا سلسلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا، اس راستے کو اختیار نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، تو تدریجاً نازل ہونے کی جو حکمتیں تھیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات علماء نے بعد میں بیان فرمائی. تو بہرحال ہوا یہ کہ شروع میں سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا، اگرچہ کہ دوسرے طریقوں سے بھی اس کو محفوظ کیا گیا لیکن حافظے پر زیادہ زور دیا گیا. تو شروع شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے. یہ حافظے والا معاملہ یہ ایک امتیازی صفت بھی علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی، کہ پچھلے جو صحیفے تھے تو ان کو کتابی شکل کے اندر محفوظ کیا گیا، لیکن یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ حفاظ کے سینوں میں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کروائی. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام تیز تیز دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. اس پر سورہ قیامہ کی یہ آیات بھی نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، لا تحرک بھی لسانک، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیجیے، لتعجل بھی، کہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان کو اس طرح سے حرکت نہ دیں کہ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہیں اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا. تو قرآنہ، ٹھیک ہے، تو قرآن کا جو لفظ ہے وہ اس آیت کے اندر پڑھنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی استعمال فرمایا، وہ قرآن ہو، اس کا پڑھوانا. ٹھیک ہے، تو لفظ قرآن کی جو تحقیق الگ سے اس کلاس میں تو شاید ہم نے نہیں پڑھی ہے، لیکن اس میں بھی یہ سارے پھر معنی کہ قرآن کا یہ مطلب ہے، قرآن اس لفظ سے نکلا، اس کے یہ بنیاد ہے وغیرہ، تو اس آیت کے اندر بھی لفظ قرآن پڑھنے کے معنی میں استعمال کیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا بلکہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا کر دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے، لیکن بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، کیونکہ تمہارے قلب کے جو کے مالک کا یہ فیصلہ ہے کہ اب تم نہیں بھول سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس طرح سے دل میں یاد کروا دیا، چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآن نازل ہوتی، ادھر یاد ہو جاتی، اس طرح سر کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، یعنی سب سے زیادہ محفوظ خزانہ تو نبی علیہ السلام کا اپنا سینہ تھا قرآن مجید کے لیے، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا، ظاہر رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کو ملنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو وہی قرآن ہے، اب نبی علیہ السلام اپنی ہی بات سے پیچھے پھر جائیں تو یہ تو بالکل ہی عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ ایک عام نارمل آدمی کے عمل کے خلاف ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو کہہ کر کے جائے نا پھر اس سے پلٹ جائے، تو نبی علیہ السلام جو فرما رہے تھے وہی قرآن مجید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی دوسرا بندہ تو انوالو ہی نہیں تھا نا، نبی علیہ السلام کی بجائے کوئی دوسرا تو انوالو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ایسا تو نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تو قرآن مجید کا جو قرآن رمضان المبارک کے اندر پڑھنا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے اس والے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک شہر القرآن، قرآن مجید کے اپنے الفاظ سے بھی ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹرا تعلق ہے رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ، کسی اور مہینے میں نہیں ریپیٹیشن کا آتا، یہ دورے کا آتا، بلکہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک کے اندر ہی اس دور کا ذکر آتا ہے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا، آخری رمضان المبارک میں دو مرتبہ، آخری رمضان المبارک کے اندر اعتکاف بھی جو ہے وہ 10 کی بجائے 20 دن کیا تھا، اور دور بھی دو مرتبہ کیا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ساری باتیں لکھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے معانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ قوم تھی کہ جو کہ ہزاروں سال جو ہے نا وہ گمراہی کے گہرائیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت جو ہے وہ نہیں آئی تھی، تو یہ تو ایسا ہوتا ہے جس کو انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے نا کہ یو ہٹ دا جیک پاٹ، آپ کے تو ہاتھ میں خزانہ لگ گیا، تو صحابہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے ہماری اپنی زبان کے اندر، اور ایسی بہترین زبان کے اندر اللہ کا کلام ہمیں عطا ہو گیا ہے، تو اب تو نا انہوں نے جو قدر کری ہے قرآن مجید کی تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے، از اٹ نیسسری فار اس ٹو کمپلیٹ ہول قرآن، ویدر ویدر کی اسپیلنگ نہیں ہوگی، ان لسننگ اور ریسائٹنگ ان رمضان، اٹ از ویدر لسننگ اور ریسائٹنگ، اٹ از ناٹ نیسسری کا مطلب کیا ہے، عربی زبان کا تو یہ لفظ نہیں ہے نا نیسسری، ٹھیک ہے؟ تو فرض واجب مستحب یہ شریعت کے درجات ہوتے ہیں، شریعت کے جو 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 احکامات ہوتے ہیں، فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، تو فرض اور واجب تو یہ نہیں ہے لیکن یہ سنت موقعہ، ہاں یہ آپ نے خود ہی لکھ دیا، تو نبی علیہ السلام تاکید کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو حفاظ کرام ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن مجید سنائیں، اور اگر سنا نہیں سکتے یعنی ان کو کوئی مصلی ملا نہیں ہے سنانے کے لیے تو وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ قرآن مجید تراوی کے اندر اگر نہیں بھی سنا سکتے ہیں کسی وجہ سے، ان کو نہیں مصلی ملا پڑھنے کے لیے، تو مصلی ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو مقتدی نہیں ملے جو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ان سے پورا قرآن مجید سنائیں، फिर जो है वो दिन के वक्त अपना कुरान मजीद दोहराएं, किसी और को पकड़ करके सुनाएं, या बल्कि हमने तो ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में भी यकीनन ऐसी होता है कि जो हुफाज कुरान होते हैं ना, तो वो मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर बस दो मुक्तदी पकड़ लेते हैं कि बस तुम जो है ना वो मेरा कुरान सुन लो, तीन लोगों की जमात हो जाती है, ठीक है। तो इतनी तरावियां हो रही होती हैं कि हर हाफिज जो है ना उसने छोटी सी, अच्छा वो तरावी की जमात है ना, ये कोई फर्ज नमाज की थोड़ी है कि आप इशा की जो है वो छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, नहीं, इशा तो एक ही होगी, लेकिन तरावी की जितने हुफाज हैं उतनी जमातें, ठीक है। तो ये हुफाज कराम को ना, ये रमजान मुबारक से कई महीना पहले ये फिक्र लग जाती है कि मैं कहाँ सुनाऊंगा, मैं किसको सुनाऊंगा, कौन पीछे मेरे पीछे खड़े होगा, अच्छा मेरा सामे कौन होगा, ठीक है, कोई ऐसा सामे चाहिए जो कि मेरी गलतियां जो है वो निकाल सके, मुझे जो है वो हेल्प कर सके कुरान मजीद सुनाने में। यानी ये फिक्रें होती हैं, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फिक्र है, कुरान मजीद सुनाने की फिक्र, कुरान मजीद को पक्का करने की फिक्र। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं, खवातीन जो हाफिजा होती हैं, तो वो फिर खुद खुद तरावी पढ़ें, अकेले तरावी पढ़ें, और उसके अंदर जो है वो पूरा कुरान का दौर कर लें, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलसिले के मामूलात में कुरान पूरा साल होता पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ रमजान में पढ़ते थे, या आपको किसी ने कहा कि सिर्फ रमजान में पढ़ते थे, है? तो अजीब गरीब किस्म की बातें नहीं किया करें, आपको पहले भी डांट पड़ चुकी है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पूरे साल में पढ़ते थे, पूरा एक कवर टू कवर जो है ना वो रमजान मुबारक में फिर से पढ़ते थे, बल्कि फिर से पढ़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाने की बात हो रही है, पढ़ने का तो यहाँ पे जिक्र जिक्र ही नहीं है, तो पढ़ना जो है वो तो अलग से चल रहा है, यहाँ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाने की बात हो रही है ना, ठीक है। तो वो एक दफा पहले सुनाते थे और दो दफा जो है वो आखिरी साल के अंदर सुनाया था, ठीक है। बहरहाल और हमें भी इसी तरह सिलसिले के मामूलात में जो एक पारा पढ़ने का कहा जाता है, तो ये एक पारा जो है ना ये कोई लिमिट नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जितना पढ़ना है पढ़ें, लोग तो माशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर एक कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते हैं, कोई एक महीने में कर लेते हैं, कोई जो है वो 3 दिन के अंदर कर लेते हैं, 3 दिन से कम कुरान मजीद पूरा पढ़ना ये इतना पसंद नहीं किया गया, लेकिन कोई सर्टन कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से इंसान जो है वो एज एन एक्सेप्शन एक दिन में एक कुरान मजीद खत्म कर रहा है, तो उसका भी जवाब बनता है, लेकिन 3 दिन के अंदर कुरान मजीद खत्म करना जो है ना वो सबसे बेस्ट है, या 3 से ज्यादा दिनों के अंदर। बहरहाल, तो सहाबा कराम में से हर शख्स इस मामले में दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में रहता था, बाज औरतों ने अपने शौहरों से सिवाय इसके कोई मेहर तलब नहीं किया कि वो उन्हें कुरान करीम की तालीम देंगे, ठीक है। यानी कुरान मजीद जो है वो सही तजवीद के साथ, सही क़िराअत के साथ पढ़ना सिखाएंगे, कुरान मजीद के मानी की तालीम देंगे, तो औरतों ने ऐसा महर जो है महर अपना जो है वो मुकर्रर भी करना करा था। सैकड़ों सहाबा ने अपने आप को हर गमे माँ सिवा, ठीक है, यानी इसके सिवाय हर गम से जो है ना वो आजाद करके अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी, वो कुरान करीम को ना सिर्फ याद करते बल्कि रातों को नमाज में उसे दोहराते रहते थे, तहज्जुद में पढ़ करके कुरान मजीद अल्लाह ताला को सुनाना। नमाज में पढ़ने के बारे में हमारे मशायख जो है वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अपना कुरान अल्लाह को सुनाओ, ठीक है, क्योंकि नमाज में जब पढ़ता है कोई बंदा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनते हैं, और जैसे सूरह फातिहा के बारे में तो हदीस भी आती है कि सूरह फातिहा जब नमाज में ईमान वाला तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसको, एक एक आयत के जवाब में ऐसे, हाँ मेरे बंदे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरे बंदे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस तरह से अल्लाह ताला की, तो इस तरह से अल्लाह ताला को सुनाना भी कहा जाता है कुरान मजीद पढ़ना नमाज के अंदर। अच्छा, क्या लिखा, थिंक इट्स परमिसेबल फॉर वेमेन टू रिसाइट कुरान मजीद इन तरावी इन केस देयर इज नो नामहरम इन जमात। खवातीन की जमात जो है ना वो हमारे मसलक में नहीं है, खवातीन यानी दूसरे खवातीन की जमात करना, ठीक है, लेकिन अपने आप को तरावी, अपने आप यानी खवातीन भी तरावी पढ़ती हैं, ये तो बहुत आम सी बात है कि खवातीन तरावी पढ़ती हैं, ठीक है, यानी खुद अकेली तरावी पढ़ती हैं। अब जो हाफिजा है वो अकेली तरावी के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़े, ठीक है, और जो हाफिजा नहीं है वो उसको जितना याद होता है वो उतना पढ़े, सही है। अच्छा, सैकड़ों सहाबा ने अपने आप को हर गम मासबा से आजाद करके अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी। वो कुरान करीम को न सिर्फ याद करते बल्कि रातों को नमाज में उसे दोहराते रहते थे। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तय्यबा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हम अंसारियों में से किसी के हवाले फरमाते ताकि वो उसे कुरान मजीद सिखाए, और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान सीखने सिखाने वालों की आवाज़ों का इतना शोर होने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकीद फरमाना पड़ी कि अपनी आवाज़ें पस्त करो ताकि कोई मुगालता पेश ना आए। यानी किसी की आवाज़ किसी के कान में पड़ रही है तो ऐसा होता है कि आप पढ़ तो अपने तरीके से रहे थे लेकिन जो है ना वो दूसरे की आवाज़ पड़ी, अब आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से मुगालता जो है वो हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ को पस्त करने का भी सहाबा को हुक्म दिया। मशहूर वो जो वाक़ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, ये दोनों जो है वो तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो उमर रज़ियल्लाहु को सुना तो इतना ज़ोर ज़ोर की आवाज़ से पढ़ रहे थे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु जो है वो इंतहाई पस्त आवाज़ से पढ़ रहे थे, उनकी आवाज़ वैसे भी पस्त ही होती थी। तो जब उन्होंने सलाम फेरा तो दोनों से पूछा कि तुम इतना जोर से क्यों पढ़ रहे थे, उमर अतान का तो अपने हिसाब से जवाब यही इसी किस्म का होता था ना कि मैं तो सोतों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था, और अबू बकर तुम इतना आस्था आवाज से क्यों पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस जात को सुना रहा था जिसके लिए जोर से पढ़ना आस्था पढ़ना बराबर है, अल्लाह ताला को सुना रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ें, और उमर रतान को फरमाया कि आप नीचे आवाज में यानी अपनी आवाज को पस्त करें। ठीक है, तो इस तरह से एतदाल के ऊपर दोनों को जमा फरमा दिया। तो कुरान मजीद का जो गोया कि मदरसा होता है तो इसके अंदर आप चले जाएं अगर, तो माशाल्लाह बच्चे भी इसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, और बड़े भी जहाँ पे मौजूद हों तो वो भी इसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। ये दीन इस्लाम का पहला मदरसा था, ठीक है, मस्जिद नबवी ये दीन इस्लाम का पहला मदरसा था। इसका नाम जो है वो मदरसा सुफ्फा, और इसके अंदर पढ़ने वाले असहाब सुफ्फा, ठीक है, ये लोग जो थे ना ये एक तरह का बोर्डिंग मदरसा था, इसमें लोग आते थे और यहीं पे कयाम फरमाते थे, यहीं पे उनका खाना पीना होता था, और यहाँ पे वो इल्म हासिल करके फिर उसके बाद चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक यानी एक बड़ा ही डायनामिक किस्म का मदरसा था। ठीक है, किताबों में आता है कि इसमें मौजूद सहाबा इकराम की तादाद कभी 70 होती थी, कभी 70 से बढ़ जाती थी, और कभी बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंच जाती थी। तो इतने सारे लोग भी मस्जिद नबी के अंदर बाकायदा तालीम हासिल कर रहे होते थे। कुरान सुनने का ज्यादा सवाब है या पढ़ने का ज्यादा सवाब है? हाँ, ये नज़र से गुजरा है, और आपने शायद पहले भी ये सवाल किया है ख़वातीन की क्लास के अंदर, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने यही सुना है कि सुनने का सवाब जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, और देख के पढ़ने का सवाब ये बगैर देख के पढ़ने के सवाब से ज़्यादा, ठीक है, ये भी है हदीस के। तो चुनाचे थोड़ी ही मुद्दत में सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की एक ऐसी बड़ी जमात तैयार हो गई जिसे कुरान करीम अजबर हिफ्ज था। इस जमात में खुलफाए राशिदीन के अलावा हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन असाइब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वगैरह बतौर खास काबिले जिक्र हैं। ठीक है, यानी पूरा का पूरा कुरान जिन सहाबा को याद था ना तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, जिनमें खुलफाए राशिदीन और ये सारे सहाबा, लेकिन ये वो हैं कि जिनका के रिवायात में नाम महफूज रह गया कि ये पूरे के पूरे कुरान मजीद के हाफिज थे, लेकिन जिनका रिवायात में नाम नहीं है उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। कि कितने सारे जो है वो पूरे कुरान मजीद के हाफिज थे, इसके अलावा भी, यानी इनके अलावा भी। तो जैसे कि दूसरी किताबों के अंदर लिखा है, मुफ्तत उस्मानी साहब ने अपने उलूमुल कुरान किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कबीले में 70 70 कुरान मजीद के कारी तालीम के लिए भेजे। कारी, और कारी से मुराद आज वाले कारी नहीं कि जो किरात की खाली तालीम हासिल करते हैं, बल्कि कारी से मुराद हाफिज कुरान। ठीक है, तो 70 70 जो है ना वो कबीले में भेजे तालीम के लिए। और वो वाकया भी आप सबने सुना ही होगा कि बेरे मैमूना के मौके के मकाम पर 70 कुर्रा सहाबा जो है वो शहीद कर दिए गए, जिसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो फजर के वक्त क्या कहते हैं उसको, सलातुल, एक महीने तक पढ़ी थी फिर इन लोगों के खिलाफ बदुआ करने के लिए, जिन्होंने 70 हुफाज कराम को जो है वो शहीद कर दिया था। हाँ, कुनूत नाजिला जज़ाकअल्लाह। और जंगे यमामा के मौके पर शहीद हुफाज कराम के बारे में 70 की भी तादाद आती है, और 700 कुर्रा, 700 कुर्रा जंगे यमामा के ऊपर खाली शहीद हुए थे। तो ये कहाँ से आया, ये वही था ना क्योंकि मुस्तकिल ये कुरान मजीद हिफ्ज का करने का काम मुस्तकिल करे चले जा रहे थे। तो यहाँ पर तो बहुत थोड़े से नाम लिखे हैं ना उनमें से। अच्छा, किसी ने आप मैसेज लिखा था कि इंडिया में खवातीन पूरे कुरान पाक की तिलावत नहीं करती, बल्कि आखिरी 10 सूरतों को पढ़ना आम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सिर्फ जो है वो आखिरी 10 सूरतें ही पढ़ती हैं। माशाल्लाह, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुरान मजीद को हिफ्ज करते हैं, और खवातीन भी ऐसी हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि खवातीन के अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज करने का जो जो यानी रिवाज है ना, वो मर्दों के मुकाबले में डेफिनेटली कम है। ठीक है, इस सिलसिले में इंडिया में हो सकता है कि ये ज्यादा कम हो। ठीक है, उसकी वजह यही है कि खवातीन में उमूमन जो है ना वो इसकी कमी की, भाई वो कुरान मजीद जो है वो हर वक्त पढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो उसके वजह से जो 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 छुट्टी आ जाती है, गैप आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो कुरान मजीद को याद करना और याद रखना जो है वो खवातीन के लिए निस्बतन बहुत मुश्किल हो जाता है मर्दों के मुकाबले में। फिर उसके बाद जब खवातीन की शादी हो जाती है और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे तो फिर आपको पता है कि वो कितना ज्यादा बिजी करके रखते हैं अपनी माँ को। ठीक है, तो इस वजह से ये एक दौर खवातीन की उम्र के अंदर आता है कि जिसमें अगर उन्होंने याद किया भी होता है ना तो भी वो भूल जाती है। ठीक है, वो उस वक्त जो है ना टेम्परारीली भूल जाती है। तो इसी वजह से इवन कुछ बड़े भी जो है ना वो इस बात को डिस्करेज करते हैं कि खवातीन जो है ना वो, या बच्चियों को जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज ना करवाओ। ठीक है, अब मुझे इंडिया की ज्यादा तफसील नहीं पता है कि वहां पे इसके ऊपर क्या काम हुआ पिछले 70 75 सालों के अंदर। इस वजह से ये मत समझिएगा कि मैं कोई नाउजुला तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कम अज कम बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये जो विफाकुल मदारिस का जो निज़ाम है ना, विफाकुल मदारिस का, ठीक है, कि पूरा का यानी पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मदारिस विफाक के बोर्ड के साथ रजिस्टर होते हैं, और फिर इनका जो है वो पूरा मुल्की लेवल के ऊपर इम्तिहान होता है। तो शायद ये वजह बनी कि चूंकि इसके अंदर हिफ्स का भी इम्तिहान होता है, मर्दों का भी और औरतों का भी, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, हिफ्स का भी इम्तिहान होता है, तो उससे जो है ना फिर यानी एक एक गोया के एक होता है ना जिसको इंसेंटिव मिल गया कि भाई इम्तिहान देंगे हम, विफाक की जो है वो सनद मिलेगी और एक पूरा निज़ाम बना हुआ है। और ये एक इंसान की साइकोलॉजी होती है, निज़ाम बन जाता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें करना ज़्यादा आसान हो जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है ना, आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो अब विफाक के अगर आप नंबर्स देखें कि कितने हजारों की तादाद में लड़के भी जो है विफाक के हिफ्स के इम्तिहान के अंदर कामयाब होते हैं, और कितने हजारों की तादाद में लड़कियां भी, लड़कों के मुकाबले में कम होती हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद होती है। और फिर उसके बाद अल्लाह जजाए खैर अता फरमाए हमारे हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी तआलुकातुन को, वो एक यूनिक हमने देखा है। यानी हर तरफ से अगर डिस्करेज किया जा रहा हूं ना खवातीन को, लेकिन हजरत ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टैंड लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, लड़कियों को भी हिफ्स के ऊपर लगाओ, लड़कियों को भी हिफ्स के ऊपर लगाओ। और इसके अंदर बड़ी हिकमत बड़ी हिकमत। तो हजरत ने फिर इसको बाकायदा एक्सप्लेन किया कि देखो कि अगर उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया ना, और छुट्टी वगैरह के ठीक है, उस वक्त जो है वो आपको मुश्किल जरूर होती है कि बीच में अगर, तो भाई या तो बालिग होने से पहले कुरान मजीद हिफ्ज कर लें, या अगर हिफ्ज करने के दौरान बालिग हो गई हैं तो फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके अंदर सुन सकते हैं, आजकल तो अल्लाह ताला ने सुनने का इंतजाम इतना आसान कर दिया, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, अब तो फोन के ऊपर बड़ी आसानी के साथ एप्स डाउनलोड करें, किसी वेबसाइट के ऊपर जाएं, बल्कि बाकायदा कुरान मेमोराइजर किस्म की एप्स मौजूद हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत सुनने का तो मना नहीं है ना, पढ़ने का मना है ना, ठीक है? तो सुन करके उन अय्याम के अंदर काम चल सकता है, ठीक है? और फिर उसके बाद जब हिफ्ज हो जाता है ना, तो बेशक जब बच्चे होंगे, शादी होगी, जिम्मेदारियां पड़ेंगी, घर की कामकाज होगा, उस वक्त तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो उम्र बिलाखिर गुजर जाएगी। जब 40 साल की होंगी, 45 साल की होंगी, बच्चे उस वक्त तक बड़े हो चुके होंगे, अब इनके पास जो वक्त होगा ना, अगर इन्होंने बचपन में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया है, तो अब ये थोड़ी मेहनत करेंगी, ये पूरा का पूरा कुरान मजीद इनको वापस रिवाइज हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी इनको मदद क्या होगी कि इनका जो बुढ़ापा होगा ना, ठीक है ना, जब ये 50-55 की होंगी, फिर 60 की होंगी, तो उस दौर के अंदर अगर इनके पास कुरान मजीद होगा तो इनका बुढ़ापा इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा, इंतहाई हसीन हो जाएगा। इनका वक्त कुरान मजीद के साथ लगेगा, क्योंकि हाफिज जो होता है ना, उसको कुरान मजीद के साथ एक ऐसा लगाव हो जाता है कि फिर वो दूसरी चीजों के अंदर उसको उसका दिल नहीं लगता, ठीक है ना? ये कुरान मजीद का एजाज है, कुरान मजीद की खूबसूरती है। वरना अगर इन्होंने ये नहीं किया तो फिर इनका बुढ़ापा जो है ना, फिर वो आपको पता है क्या होता है उसके बाद, ठीक है ना? फिर वो करने को कोई काम नहीं होता सवाए दूसरों की जिंदगी खराब करने के, ठीक है? तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है ना, वो हिकमत अमली है कि कुरान मजीद का हिफ्ज करके, यानी जिंदगी संवर गई ना, बुढ़ापा संवर गया, आखिरी वक्त जो है वो संवर गया, और कितना बड़ा फायदा हो गया इससे, इसको कोई इदराक नहीं कर सकता। बहरहाल ये चंद रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कुरान मजीद का हिफ्ज का जो रिवाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? नहीं, तनकीद की बात नहीं, मुझे अपनी अब तक की जिंदगी में कोई ऐसी जमात का नहीं सुना, अल्लाह करे आने वाले असर में कोई खातून जरूर कुरान हिफ्ज करें। जी करेंगे, अगर जरा बशायद सर रब्ता बनाए ना, तो इंशाल्लाह कुरान जब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानने वालों में और अर्जी के ताल्लुक वालों में इतनी लड़कियां हाफिज हैं कि हम यानी हमारे पास काउंट नहीं है, हम हिसाब नहीं कर सकते हर लड़की को, ठीक है ना? सिवाय इसके कि कोई और वजूहत हो, कि होता है कि भाई हर इंसान जो है वो एक जैसी सलाहियत का नहीं, लेकिन समझ लें, ऐसा जिंदगी में यानी सोच बना लें कि बाय डिफॉल्ट हिफ्स करना ही है, बाय डिफॉल्ट हिफ्स करना ही है। हाँ, अब कोई वजह, कोई रुकावट बीच में आ गई जिसकी वजह से वो हिफ्स पूरा नहीं कर सका, तो फिर वो एक्सेप्शन कहलाए, लेकिन रूल के हर बच्चों को आपने हिफ्स के ऊपर डाला, ठीक है ना? फिर बाद में यानी ठीक है, एवरीवन कैन नॉट डू द सेम थिंग, एवरीवन इज डज नॉट हैव द सेम कैपेबिलिटीज वगैरह, तो फिर वो एक्सेप्शन बन जाएगी, ठीक है? जैसे कि उन्होंने लिखा भी, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, खवातीन खवातीन नहीं, खवातीन खवातीन के जो है ना, वो खवातीन जो है वो बेहतर हो जाते हैं, और माशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये भी सुनिए कि जो कुरान करीम याद करके भूल गया तो क़यामत के दिन अंधा, वो उलमा ने बयान किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो उसने याद किया था वो अगर भूल गया तो बस उसको जो है वो अजाबे कयामत हो जाएगा और वो अंधा होकर के खड़ा होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने कुरान मजीद को तर्क कर दी, कुरान मजीद पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है? हिफ्ज करके अगर वो तिलावत जारी रखता है ना, तो फिर वो इस वईद का मुस्तहिक नहीं होगा, तिलावत जारी रखता है, ठीक है, तो फिर वो इस वईद का मुस्तहिक नहीं होता। ये मैंने मतलब कई बुजुर्गों से सुना है, और जिनका एक का मुझे याद है, हजरत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी सुना था। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिर बाद में मजबूरियात में, इवन बड़े बड़े उलमा हैं, वो फिर किताबत के अंदर और पढ़ाने के अंदर और बयानात के अंदर और असफार के अंदर बहुत मशगूल हो जाते हैं। अब वो मुसल्ला नहीं सुना सकते, कुछ कुछ तो होते हैं जो कि फिर भी सुनाते रहते हैं लेकिन सारे नहीं सुना सकते, तो उनका फिर क्या मामला होता है? वो यही होता है कि वो तिलावत को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तिलावत कभी भी नहीं छोड़ते उसकी। ठीक है, अंधा होने की और भी तफसीर है कि कुरान पर अमल ना करना। हाँ, कुरान पर अमल ना करना वो तो फिर सिर्फ हाफिज के साथ नहीं है ना, बल्कि यहाँ पर तो ये है कि भाई हाफिज कुरान के साथ खास मामला, कुरान का इल्म हासिल करने के बाद अमल ना किया ये सब। बहरहाल आपने कहीं पढ़ा ही ऐसा क्या क्या। अच्छा, तो आगे फरमाते हैं कि गर्ज इब्तिदा इस्लाम में ज्यादा जोर हिफ्ज कुरान पर दिया गया और उस वक्त के हालात में यही तरीका ज्यादा महफूज और काबिल एतमाद था, इसलिए कि इस जमाने में लिखने पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम थी, किताबों को शाया करने के लिए प्रेस वगैरह के जराए मौजूद ना थे, इसलिए अगर सिर्फ लिखने पर एतमाद किया जाता तो कुरान करीम की ना वसी पैमाने पर अशाअत हो सकती थी, क्योंकि कितने कितना कागज आप प्रिंट करेंगे, कैसे आप जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो कागज ही अवेलेबल नहीं था। ठीक है भाई, लिखने वाले आप तैयार कर लेंगे लेकिन कागज होगा तो वो लिखेंगे ना, तो ये तो रिसोर्सेस थे ही नहीं अरब के अंदर, खुसूसन चाइना में होते होंगे, लेकिन चाइना की तो बात नहीं हो रही, यहाँ तो अरब की बात हो रही है ना। तो कुरान मजीद की वसी पैमाने पर इशाअत नहीं हो सकती थी और ना उसकी काबिल एतमाद हिफाजत। जब आपने एक लिख दिया, अब जो है वो अब यानी क्या कहते हैं, जो लिखा हुआ पारचा होता है, जो सफा होता है ना, तो अब उसकी भी तो हिफाजत करनी पड़ेगी ना। इसी वजह से हदीस मुबारक बाकायदा मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सही बुखारी में हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लेकर दुश्मन की जमीन में सफर करने से मना फरमाया। कुरान करीम को लेकर दुश्मन की जमीन में सफर करने से मना फरमाया, क्या मतलब? सीने में कुरान मजीद को लेकर के सफर करने से मना नहीं फरमाया, क्योंकि सीने में तो भाई वो बंदा सफर करेगा तो सीने उसका साथ साथ सफर करेगा ना। ठीक है, तो ये कोई थोड़ी है कि अगर तुमने हिफ्ज कर लिया अब तुम कहीं मत जाना, अब तुम सफर नहीं करना, अब तुम जिहाद पे नहीं जाना। नहीं, कुरान के यानी इस हदीस मुबारक को इस बात की दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कुरान के नुस्खे मौजूद थे लिखी शक्ल में, अगरचे के पूरी कवर टू कवर मौजूद नहीं थे लेकिन लिखी शक्ल में। तो अब उन सहीफों को, उनका कागजात को, या उन हड्डियों के मजमुए को, या उन पारचों को, या उन खजूर के पत्तों को जिनके ऊपर कुरान ने लिखा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि दुश्मन के इलाके में मत जाओ। क्या मतलब दुश्मन के इलाके में मत जाओ? क्यों दुश्मन के इलाके में मत जाओ? क्योंकि दुश्मन जो है ना वो उस सहीफे को लेकर के उसके अंदर रद्द बदल करने की कोशिश करेगा ताकि मुसलमानों का दीन खराब हो जाए। ठीक है, मुसलमानों के दीन के अंदर जो है वो तफरका पड़ जाए, लोग जो है वो कुरान मजीद के बारे में कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, शक का शिकार हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो लिखी शक्ल के ऊपर एतमाद नहीं किया गया बल्कि जो एम्फेसिस दिया गया ना वो हिफ्स के ऊपर, याद करने के ऊपर, और बहुत बड़ी तादाद में, यानी ये नहीं कि दो चार लोगों को याद करवा दिया और बस, तवातुर के साथ याद करवाने के ऊपर। इट्स अबाउट द फिजिकल फॉर्म एंड द रीजन वॉज दैट दे कैन डैमेज द फिजिकल कॉपी। यस, दे कैन डैमेज द फिजिकल कॉपी नहीं, बल्कि दे कैन मैनिपुलेट द फिजिकल कॉपी। ठीक है, दे कैन चेंज व्हाट इज रिटन द फिजिकल कॉपी। ठीक है, तो दुश्मन के इलाके में जाने से नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान लेकर के अपने जमाने में मदद फरमाया था। अच्छा, अच्छा, तो फरमाया कि ना इसकी काबिल एतमाद हिफाजत हो सकती थी लिखी शक्ल में, इसके बजाय अल्लाह ताला ने अहले अरब को हाफिजे की ऐसी कुव्वत अता फरमा दी थी कि एक एक शख्स हजारों अशआर का हाफिज होता था और मामूली मामूली देहातियों को अपने और अपने खानदान ही के नहीं बल्कि उनके घोड़ों तक के नसबनामे याद होते थे, इसलिए कुरान करीम की हिफाजत में इसी कुव्वत हाफिजा से काम लिया गया और इसी के जरिए कुरान करीम की आयात और सूरतें अरब के गोशे गोशे में पहुंच गए हिफ्ज की शक्ल में। ठीक है, तो ये भी बात हम अब जो है मेडिकल साइंस की भी इसके ऊपर शवाहिद मौजूद हैं कि जिस ह्यूमन कैपेबिलिटी को फैकल्टी को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो ज्यादा शार्प हो जाती है, ज्यादा जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो याददाश्त को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा याददाश्त जो होती है वो बेहतर होती है। तो अगर लिखी शक्ल को जो है वो ज्यादा राइज करने की कोशिश की जाती तो फिर एक रिलायंस हो जाती है ना कि हाँ भाई है तो लिखा हुआ, अब ठीक है नाइस टू मेमोराइज, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई कोई को मसला नहीं है, ठीक है ना, है ना लिखी हुई शक्ल में बस, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से जो 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 ज्यादा दारोमदार है ना, वो दारोमदार नहीं, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, वही रिलायंस का लफ्ज, तो वो जो है फिर वो लिखी शक्ल के अंदर हो जाता है और फिर लोग जो है ना वो इतना ज्यादा याद नहीं करते पुराने तरीके को जितना कहते हैं। अच्छा मे बी दे कुड ऑल्सो डू डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कुरान, दैट्स व्हाई मे बी प्रोफेसर सेड नॉट टू टेक कुरान देयर। बहुत गैर मामूली हाफजा हदीस की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल हुआ, यही गैर मामूली हाफजा जी, तो इतना गैर मामूली हाफ़िज़ा था कि हदीसें भी तो बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर जो है वो हदीसें भी सहाबा कराम ने याद करी ना। तो ये सही हदीसें जो है वो बिल्कुल यानी रिवाया बिल मानी नहीं बल्कि रिवाया बिल लफ्ज, एक एक लफ्ज जो है नबी अलैहिस्सलाम से सुन करके आगे नकल किया, ठीक है। तो ये गैर मामूली हाफ़िज़ा अल्लाह ताला ने पता किया था। अच्छा एक और हदीस मुबारका हजरत ने नकल करी थी कि जिससे कि ये भी ये कंफर्म होता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने लिखवाया भी था, जो कातिबे वही 40 के करीब कातिबे वही मशहूर हैं, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बड़े मशहूर कातिबे वही हैं, और जो है वो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला जो है बहुत मशहूर कातिबे वही, और बहुत सारे सहाबा, तो ये किताबत भी मौजूद थी। तो एक हदीस में है कि कोई शख्स नबी फरमाए कोई शख्स कुरान करीम के नुस्खे में देखे बगैर तिलावत करे तो उसका सवाब 1,000 दर्जा है, देखे बगैर तिलावत करे तो उसका सवाब 1,000 दर्जा है, और अगर कुरान के नुस्खे में देख कर तिलावत करे तो 2,000 दर्जा, ठीक है, नुस्खा देख करके तिलावत करे क्योंकि देखने का भी सवाब है, जैसे काबतुल्लाह को देखने का सवाब है, अल्लाह वालों के चेहरों को देखने का सवाब है, उसी तरह कुरान मजीद के मसहफ को देखने का सवाब है, ठीक है। तो सवाब क्या होता है, ये एक इंसेंटिव होता है ना ईमान वाले के लिए, और वो इंसेंटिव क्यों होता है, क्योंकि उस चीज की अहमियत होती है, ठीक है ना, ये काम करेंगे तो फायदा होगा। अच्छा एक तो करने वाले को फायदा होगा, जन्नत की करेंसी यानी सवाब मिलेगा उसको, जिससे कि जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात मिलेंगे, और दूसरा क्या कि इसके जरिए से दीन का फायदा भी तो निकाला जा रहा होता है, हासिल किया जा रहा होता है। तो अब अगर बगैर देखे तो इंसान का हाफजा है, अब उसके अंदर कोई गलती हुई कुछ, जैसे कि हुफाज को मुतशाबिहात लग जाते हैं, ठीक है, और जो है वो कोई चीज भूल गए, एक आयत स्किप करके आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है इंसान से, इंसान तो फिर निस्यान का मजमू है ना, गलती हो जाती है इंसान से। तो मसहफ को देख करके पढ़ने से इस गलती से भी जो है वो कुरान मजीद महफूज रहेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सवाब भी रख दिया, जैसे कि काम आपने करवाना होता है तो अब आप उसके ऊपर एक रिवॉर्ड भी रख दें तो बंदे को और इंसेंटिव मिल जाता है काम करने का, ठीक है। तो हदीस में इस तरह से भी आया है, तो इस हदीस से भी साबित होता है कि नबी रसूल के जमाने में भी लिखी शक्ल में कुरान मजीद मौजूद था। जस्ट सीइंग द कुरान लाइक सीइंग काबा इज ऑल्सो सवाब, सवाब की नीयत से देखें, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला पास सवाब की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन बकायदा इसके ऊपर कोई रवायत है ये मेरे जहन में नहीं है सब, कि खाली बस ऐसी ही कुरान मजीद को देखने से भी सवाब मिलता है, ये मेरे जहन में नहीं है इसके लिए, ठीक है। पढ़ने के ऊपर तो आपने सुन ली ना, इसके पढ़े बगैर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पूरी पूरा वाकया जो है वो कुरान मजीद के जमा करवाने वाला, वो इंशाल्लाह फिर अगले दर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। और कोई चीज रह गई हो सिलसिले में, हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला की यह हदीस पीछे ने सुन लेते हैं। क्लास खत्म करने से पहले, कि फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गर्मी लगती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथहर पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैफियत खत्म हो जाती तो मैं मूंढे की कोई हड्डी, लेकिन यानी जानवर की जो वो आपने देखा होगा कि यानी हिप बोन जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा चौड़ी और बड़ी सी होती है, और ऊंट की तो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो मूंढे की कोई हड्डी यानी बकायदा एक पेप, एक गोया के एक टैबलेट की शक्ल में होती है, या किसी और चीज का टुकड़ा लेकर के खिदमत में हाजिर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते रहते और मैं लिखता जाता था। यहां तक कि जब मैं लिख कर फारिग होता तो कुरान को नकल करने के बोझ से मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी टांग टूटने वाली है और मैं कभी चल नहीं सकूंगा। बहरहाल जब मैं फारिग होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि पढ़ो, मैं पढ़कर सुनाता, अगर इसमें कोई फरोगजाश्त होती, कोई गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह फरमा देते, फिर उसे लोगों के सामने लेकर के आते। ठीक है, ठीक है, किसी ने मैसेज लिख करके ट्वीट कर दिया तो मैं पढ़ नहीं सका। ठीक है, यहाँ पे हम आज क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह, सलाम अलैकुम। ओ, अब मैसेजेस आ रहे हैं। मुसहफ क्या मुसीफ पर पढ़ने के ज्यादा सवाब है, मुसहफ देख कर पढ़ने का ज्यादा सवाब है। जी, यही तो हदीस पढ़ी थी अभी। देख कर पढ़ना बगैर देख के पढ़ने से अफजल होने की क्या हिकमत है, क्योंकि बजाय तो हिफ्ज करना मुश्किल काम है। हिफ्ज करना मुश्किल काम है, अभी तो काफी सारी बात हुई इसके ऊपर कि देख करके पढ़ने की हिकमत क्या है, गलती से हिफाजत होती है ना इसमें। मोबाइल से देख करके पढ़ना, व्हेन द लेग यूज्ड टू, व्हाई द लेग यूज्ड टू हर्ट, पता नहीं बस। बहरहाल एक बोझ होता था उनका, या तो वो इस तरीके से बैठते थे और बहुत देर तक बैठे रहते होंगे कि जिसकी वजह से जो है वो पैर में दर्द होना शुरू होता होगा, या ये कि जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती थी तो उसका एक बोझ जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ता था तो उसी तरीके से उसको पहली दफा किताबत करने में इवन कातिब के ऊपर भी जो है एक फिजिकल फिजिकल किस्म का बोझ पड़ता। हो सकता है ऐसा मामला होता हो, अल्लाह आलम। सवाब मोबाइल से कुरान मजीद देख करके पढ़ सकते हैं, और उलमा ने इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें कही हैं कि कुछ के नज़दीक जो है वो ये यानी राजे यानी मरजूह नहीं है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए मोबाइल से देख करके। उसकी वजह भी यही बयान करते हैं कि मोबाइल के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं ना, वो टू टू करके जो है वो मैसेज आते रहेंगे, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कोई पॉपअप आ जाएगा, कभी फोन आ जाएगा, तो ये फिर कुरान मजीद की बेअदबी हो जाती है, क्योंकि इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे फिर बचना जो है मुमकिन नहीं होता। आप मोबाइल हाथ में लेकर के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो फिर बाकी सारी चीजें भी तो होती रहेंगी ना उसके अंदर। और दूसरे उलमा जो है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल जायज़ है, और जिस वक्त कुरान मजीद का सफ़ा जो है वो खुला हुआ है मोबाइल के ऊपर तो उस वक्त मोबाइल की हैसियत कहते हैं कि मसहफ की जैसे ही है। ठीक है, तो उसको जो है वो बिला वजू हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन जिस वक्त कुरान मजीद के अल्फाज नहीं है स्क्रीन के ऊपर तो उस वक्त मोबाइल जो है वो बगैर वजू के हाथ लगाना नहीं, कोई हर्ज नहीं है। इसके ऊपर मजीद काफी तफसील में अजामी और मौका पर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।